السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. انشاءاللہ ہم آج تھوڑا سا کلاس کے بارے میں انٹروڈکشن لیں گے کہ ہم اس کلاس میں کیا اور کیسے پڑھیں گے. بیسیکلی ہم اس کلاس میں تجوید پڑھیں گے اور کلاس کے اندر ہی آپ لوگوں کی انشاءاللہ لسننگ بھی ہوگی اور انشاءاللہ اسی طرح سے ہم رولز کو پڑھیں گے. اور رولز کے لیے ہم استاذہ کریمہ کی کارول کی جو کتابیں ہیں 3 volumes کے اندر ہیں، book 1, book 2 اور book 3. انشاءاللہ جتنا ہمیں ٹائم ملے گا، چانس ملے گا، ہم اس کو دیکھیں گے اور ان کے رولز کو ساتھ ساتھ اپلائی کرنا، ان کی اپلیکیشن ورڈز کے اندر اور قرآن سے ورڈز میں تطبیق بھی کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ تجوید کا جو علم ہے وہ کیا ہے اور اس کو سیکھنا کیوں ضروری ہے. بیسیکلی تجوید، اگر ہم اس کو یعنی ڈکشنری میننگ میں، تو خوبصورتی، کسی چیز کے اندر نکھار پیدا کرنا. لیکن اگر ہم اس کو اصطلاح میں دیکھیں تو قرآن پاک کو اس طرح سے پڑھنا جس طرح سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اور ایک پوری اوتھینٹک چین سے ہمارے تک یہ قرآن پاک پہنچا. یعنی آپ اگر اس میں اجازہ والے ٹیچرز کو لیں، تو جن ٹیچرز کے پاس اجازہ ہوتی ہے وہ چین کے اندر ہوتے ہیں کہ ہم نے فلاں استاد سے اور فلاں نے فلاں سے، اور یہ ساری چین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر جبرائیل علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ تک جاتی ہے. تو قرآن پاک کو اس طرح سے پڑھنا جس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور اس طرح سے سیکھنا یہ ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اس کا ایک حکم تو ہمیں خود قرآن پاک میں ہی ملتا ہے. یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں، آیہ نمبر 121 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ہم الخاسرون. کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ ایمان والے ہیں. یؤمنون بہ، یہی ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ، اور جو کوئی کفر کرے گا اس کے ساتھ وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. تو تلاوت جو ہے وہ بیسیکلی یعنی ایمان کے لیے یہاں پر ایک طرح سے شرط رکھی گئی کہ تلاوت قرآن کو یا کتاب کی تلاوت جو ہے اس کو کرنا بہت ضروری ہے. تلاوت کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو اس کو پڑھنے کا طریقہ کہ آپ اس کو صحیح طریقے کے ساتھ جس طرح سے وہ نازل ہوا ہے اس طرح سے پڑھیں، دوسرا آپ کی دل کی حاضری. آپ نے اپنے کورس کے اندر دیکھا ہوگا کہ تلاوت جو ہے وہ کسی کے قدم کے اوپر قدم رکھنا، یعنی پیچھے پیچھے چلنا. تو اصل میں تلاوت آپ کی انڈرسٹینڈنگ پلس آپ کی ریڈنگ، یہ دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ہمیں اسی طرح سے سورۃ البقرہ کے اندر دو پورشنز میں، ایک جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے نبی کے لیے دعا کی وہاں پر، اور یعنی جو ان کی دعا کا جو حصہ تھا وہ کیا تھا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ اے ہمارے رب تو مبعوث کر ان میں سے ایک رسول جو کہ انہی میں سے ہو اور ان کو تیری آیات تلاوت کر کے سنائے، پھر انہیں کتاب کی تعلیم دے، حکمت دے اور تزکیہ کرے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو ذہن میں ایک پلاننگ تھی ایک ٹیچر اسٹوڈنٹ کی، یا کہ ایک ایسا رسول ہونا چاہیے جو کہ میسج دے، اس کے جو 4 اہم کام ہیں اس میں سے ایک اہم کام ان کا تلاوت تھا. پھر آپ دیکھیں کہ اسی دعا کو آنسر کیا گیا آیہ نمبر 151 میں سورۃ البقرہ میں، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کما ارسلنا فیکم رسولا، یعنی تم میں ایک ایسا رسول ہم نے بھیج دیا جو کہ تمہی میں سے ہے، اور اس کا کام کیا ہے، یتلو علیکم آیاتنا، वो तुम्हारे ऊपर हमारी आयात पढ़कर तिलावत करता है, वह युजा की कुम और तस्किया करता है। अगर आप इन दो आयतों का, यानी वो आयत जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है, आयत नंबर 129 और 151, अगर आप इसको देखें तो आप देखें कि जो तरतीब है ना वो डिफरेंट है, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ में जो सबसे पहली चीज थी वो तिलावत थी आयात की, जो दूसरी चीज थी वो किताब का इल्म था, जो तीसरी चीज थी वो हिकमत, और जो फोर्थ थी वो तस्किया। और आयत नंबर 151 में जब अल्लाह ताला ने इस चीज को आंसर किया तो उन्होंने इन चार कामों की तरतीब चेंज कर दी, यानी तिलावत कलाम पहले आ गया और सेकंड नंबर पर जो चीज आ गई वो तस्किया, जिसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फोर्थ नंबर पर मेंशन किया। अल्लाह ताला ने जब आंसर किया दुआ को तो तस्किया सेकंड नंबर पर आ गया, यानी ये जो अल्फाज का और जो कामों की डिस्ट्रीब्यूशन का एक तसलसल था उसके अंदर जो चेंज आया, इससे हमें एक ये बात भी समझ में आती है कि जो तिलावत है आपकी, सही तिलावत करना, उसी से आपका तस्किया शुरू हो जाता है। यानी आप किताब का इल्म हासिल करना है, हिकमत हासिल करना, ये सब चीजें अपनी जगह पर जरूरी हैं, लेकिन आपका जो तस्किया है वो उसी वक्त शुरू हो जाएगा जब आपकी तिलावत बेहतर होगी, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी रीडिंग, ये दोनों चीजें इंप्रूव होंगी। फिर इसी तरह से बहुत सारी हमें ऐसी अहादीस मिलती हैं जिससे हमें पता चलता है कि कुराने पाक को उस तरह से पढ़ना जैसा कि ये नाजिल हुआ, ये जरूरी है। और इन्हीं सब, जैसे एक हदीस का मफहूम है कि जो गिना से कुरान नहीं पढ़ता वो हम में से नहीं, यानी कुराने पाक को अच्छी खूबसूरत आवाज से नहीं पढ़ता। और खूबसूरत आवाज जो है वो क्या है, वो असल में तजवीद से आपके अंदर आती है, यानी अगर आप वैसे ट्यून अच्छी कर लें या बाकी चीजें कर लें मगर तजवीद की एप्लीकेशन नहीं है तो आपकी आवाज में वो खूबसूरती, आपकी रीडिंग के अंदर वो खूबसूरती नहीं आ सकती जो कि तजवीद की परफेक्शन से आपकी रीडिंग के अंदर आती है। तो बहरहाल इन सारी चीजों को मद्देनजर रख के जो स्कॉलर्स हैं वो तजवीद के इल्म को हासिल करना फर्ज आइन करार देते हैं, यानी ये हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर फर्ज है कि वो इस इल्म को सीखे। अब इस इल्म के दो हिस्से हैं, एक है रीडिंग का और दूसरा है रूल्स का। जो रीडिंग वाला पोर्शन है वो तो सब एग्री हैं कि ये फर्द आइन है, हर मुसलमान मर्द और औरत को सीखना चाहिए कि आप अपना कुरान किसी लर्न टीचर से सीखें जो एक्सपर्ट हो और जिसको अबूर हासिल हो गलतियां निकालने में भी और तजवीद के रूल्स में भी, और अपनी रीडिंग को बेहतर करें। तो रीडिंग को फॉलो करना और रीडिंग को सीखना ये हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर फर्ज है, लेकिन जो रूल्स हैं उसके लिए हुक्म क्या है कि वो फर्द किफाया है। फर्द किफाया क्या होता है कि जैसे आप अगर पूरी कम्युनिटी में से कोई एक बंदा उस फर्ज को अदा कर दे तो वो सबकी तरफ से अदा हो जाता है, जैसे सलातुल जनाजा फर्द किफाया है। इसी तरह से तजवीद के रूल्स का इल्म हासिल करना या जो डिफरेंट कराआत हैं उनका इल्म हासिल करना ये फर्द किफाया है, कि अगर आपकी कम्युनिटी में से कोई एक आध बंदा भी इस इल्म को हासिल कर लेता है तो ये सबकी तरफ से काफी हो जाएगा। इसमें आपने एक और चीज याद रखनी है, वो ये कि बहुत सारे लोग ना फर्द किफाया को समझकर कि हाँ ये ऑप्शनल है तो वो कहते हैं कि ठीक है रीडिंग दुरुस्त कर लेते हैं और नो नीड टू लर्न दी तजवीद रूल्स। तो कभी मेरे जहन में फर्द किफाया की बात आती है तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अगर आप यहाँ पर अगर कोई काम अनाउंस किया जाए और आपका टीचर काम को अनाउंस करता है तो आप देखें कि उसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट हाथ उठाता है, अब ये आपके लिए किफाया बन गया ना, ऑप्शन आ गई, आप 15-20 लोग हैं, ज्यादा हैं, उनमें से कोई दो हाथ उठाएंगे या हो सकता है एक उठाए, लेकिन जो स्टूडेंट वो वॉलेंटरली वो काम करेगा कि नहीं मुझे असाइन किया जाए मैं ये काम करूंगी आपके लिए, तो वो टीचर के दिल के करीब होता। तो इसी तरह से जो फर्द किफाया है अगर हम उनमें अपना हाथ उठाते नहीं कि अल्लाह ताला हम ये काम करेंगे, यानी आप देखें कि हमारा काम क्या है, सिर्फ इरादा करना, सिखाना अर रहमान अल्लम अल कुरान, सिखाना भी अल्लाह ताला ने है, तौफीक भी अल्लाह ताला ने देनी है, काम, यानी बाकी सब काम अल्लाह ताला का है, हमारा काम क्या है, इंटेंशंस को पैदा करना। आपकी इंटेंशन, आपकी इंटेंशन जो है वो प्योर होनी चाहिए, बाकी सब काम अल्लाह ताला करेंगे। तो उसमें यह है कि अगर आप अपना हाथ खड़ा करते हैं कि नहीं अल्लाह ताला मुझे दे, मैं काम करूंगी, तो इससे एक आपके क्योंकि हर इंसान जो दिल में ईमान रखता है उसका ये शौक होता है कि वो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करे, तो ये उन कामों में से है जिससे कि हम अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी फर्द किफाया को ऑप्शनल मत लिया करें, फर्द किफाया को चांस लिया करें कि ये हमारे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जिससे कि हम अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकते हैं, मतलब ये कि हम अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज है ये आपके पास फर्द किफाया में आती है। फिर इसी तरह से आप देखें कि जब हम कहते हैं ना फर्द आइन है, अब बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं और वो आइन ही को प्रोनाउंस नहीं कर सकते, या वो हा को, या तजवीद के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें आपको थोड़ा यानी एफर्ट आपकी डिमांड करती हैं, समटाइम्स आप डिसहार्ट होते हैं ये सांग अभी भी ठीक नहीं हुई, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फोनिक्स को बहुत जल्दी पिक करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फोनिक्स को इतना अच्छा पिक नहीं कर सकते, उन्हें एक एफर्ट की जरूरत होती है, एक एक्स्ट्रा ड्रिल की जरूरत होती है। तो अब सब लोग फिर परेशान हो जाते हैं कि अब अगर हम सही कुरान तजवीद से नहीं पढ़े तो अब हमारे साथ क्या मामला होगा ना, यानी अब ये तो फर्द आइन है तो फिर क्या होगा। इसमें फिर स्कॉलर्स लोगों की डिविजन करते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। वो लोग, वो स्टूडेंट्स जो कि कुराने पाक को सही पढ़ने की एफर्ट करते हैं और वो सही पढ़ना अचीव कर लेते हैं, यानी आप कोशिश करते हैं और आप अपने रीडिंग को अचीव कर लेते हैं एक हायर लेवल का, और आपके टीचर्स आपको कहते हैं कि आपकी जो रीडिंग है आपने उसको परफेक्ट कर लिया, तो इन लोगों का जो रुतबा है वो सफवतुल मला में होगा, यानी फरिश्तों की सफ में, और वो भी वो फरिश्ते जो कि अल्लाह ताला के बहुत करीब होते हैं। इसी तरह से आपको पता है अहलुल कुरान जो है वो अहलुल्लाह में आते हैं, यानी अल्लाह ताला अहलुल कुरान को अपनी फैमिली करार देते हैं। याद रखें कि अहलुल कुरान से मुराद सिर्फ वो लोग नहीं जो कि अच्छे तरीके के साथ तजवीद पढ़ना जानते हैं, जहां हमें ये खुशखबरियां मिलती हैं कि आप अच्छा तिलावत करेंगे तो आपका रुतबा सफ़तुल मला में होगा, आप अगर कुरान के हामिल हैं या कुरान उठाने वाले हैं वहां आपका जो अल्लाह ताला आपको अपनी फैमिली के अंदर लेकर आते हैं। तो आप देखें कि जहां आपको ये खुशखबरियां मिलती हैं वहां पर आपको ये भी मिलता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका कुरान उनकी हलक से नीचे नहीं जाता, और अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में रखे उन लोगों में से होने में से कि हमारा कुरान ऐसा हो जो कि हमारे हलक से उतर कर हमारे दिलों में जाए, और हम उन लोगों में से हों जो कि कुरान पाक को सही तरीके के साथ पढ़ते भी हैं और उसको अपने दिल में भी रखते हैं, यानी उनके दिल भी उससे बदलते हैं और उनके अमाल भी बदलते हैं। तो अहम चीज ये है, यानी सबसे ज्यादा अहम चीज ये है कि ये आपके ऊपर असर भी करे। तो वो लोग जो कि कुरान पाक सही पढ़ना सीख जाते हैं वो तो विनर्स में आगे, ठीक है, लेकिन वो लोग जो कि कुरान पाक को सही नहीं पढ़ सकते और वो एफर्ट करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, अपने दिन का हर रोज का एक हिस्सा निकालते हैं और वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं, रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं, रूल्स को बार बार रिवाइज करते हैं, यानी एक ड्रिल करते हैं, एफर्ट करते हैं उसको सीखने के लिए, तो ये लोग जो कि स्ट्रगल करते हैं मगर फिर भी एक हायर लेवल ऑफ रीडिंग अचीव नहीं कर सकते, इनके लिए एक लेटर पढ़ने के ऊपर डबल रिवॉर्ड है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं मुझसे कि अब हम इतनी गलतियां करते हैं तो क्या हमें थोड़ी देर कुरान की रीडिंग को छोड़ देना चाहिए और पहले हम तजवीद सीख लें और फिर हमें पढ़ना चाहिए? नहीं, ये जो आपके पास टाइम है जिसमें आप गलतियां करते हैं, इट्स अ गोल्डन टाइम फॉर यू कि आप एक लेटर पढ़ेंगे और आपको डबल रिवॉर्ड है। आम इंसान को एक हर्फ पढ़ने के ऊपर 10 नेकियां मिलती हैं, और जो लोग स्ट्रगल करते हैं और उस तरह से नहीं पढ़ सकते उनको एक हर्फ पढ़ने के ऊपर 20 नेकियां मिल रही हैं, तो आपका जो रिवॉर्ड है वो डबल हो रहा है। इसलिए इट्स अ विन विन गेम, आप इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, आप सीख लेते हैं तो भी, और अगर आप नहीं सीख पाते मगर जस्ट कीप स्ट्रगलिंग तो भी आप विन विन गेम में हैं। ठीक है, और हमेशा याद रखें कि अल्लाह ताला कयामत के दिन ना तो हमारी डिग्रीज देखेंगे ना हमारी इजाजत देखेंगे, अल्लाह ताला कयामत के दिन सिर्फ हमारी इंटेंशन और हमारा हार्ड वर्क देखेंगे कि वो अल्लैस लिल इंसान इल्ला मा सआ, तो हमारी कोशिश जो है वो देखी जाएगी, और हमें हमेशा अपना फोकस इस चीज के ऊपर रखना चाहिए कि हमारी कोशिश में कोई कमी ना हो। अचीवमेंट जो है वो ना उस्ताद के हाथ में होती है ना स्टूडेंट के हाथ में होती है। आपका शरह सदर करना, क्यों हम दुआ करते हैं रब्बि श्रह ली सदरी, इसलिए क्योंकि जो हमारा शरह सदर है किसी भी इल्म के लिए, चाहे वो आपका तफसीर का नॉलेज है, चाहे वो आपका हदीस का है, चाहे वो आपका तजवीद का है, ये शरह सदर अल्लाह की तरफ से होता है। तो ये ना तो आपके सिखाने वाले के हाथ में है ना सीखने वाले के हाथ में, हमारे हाथ में क्या है, चाहे वो उस्ताद है और चाहे वो शागिर्द है, उसके हाथ में क्या है, कोशिश, यानी आपकी जो कोशिश है उसके अंदर कमी होनी चाहिए। ठीक है, अगर उसमें कमी है तो फिर हमें सोचने की जरूरत है कि हम उस कमी को कैसे पूरा करें, और बाकी जो अचीवमेंट है वो अल्लाह ताला के हाथ में। ठीक है, तो ये चीज जो है ये हमारे माइंड में होनी चाहिए। फिर ये तो दो तरह के लोग हो गए, वो जो के एफर्ट करते हैं और अचीवर्स हैं, और वो जो एफर्ट करते हैं मगर वो एक हायर लेवल को अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, और जो तीसरे लोग हैं वो कौन से हैं, वो लोग हैं जो के एफर्ट ही नहीं करते। अब ये जो मेंटेलिटी होती है ना, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि कुरान पाक यानी आप तजवीद को सीखने की एफर्ट क्यों नहीं करते। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उनके माइंड में एक यानी एक प्री सेट माइंड होता है, प्री सेट माइंड के साथ वो होते हैं कि हम सीख ही नहीं सकते। और अगर हम देखें तो हमारे जो हमारी एक जेनरेशन बिफोर यानी वो इसी माइंड के साथ हैं कि बहुत ज्यादा निग्लेक्ट हुआ ये इल्म, तो लोगों को बहुत मुश्किल होती है कुरान पढ़ने में। और एक तो ये कि लोग इस माइंडसेट के साथ होते हैं कि हम नहीं सीख सकते, दूसरा टीचर इस माइंडसेट के साथ पढ़ाता है कि स्टूडेंट नहीं सीख सकता। मैंने खुद पर्सनली बहुत सारे ऐसे टीचर्स को देखा जो स्टूडेंट की आइंस पर काम नहीं करते, हा पर काम नहीं करते, कभी उन्हें रोकेंगे नहीं, उनका अपना हा बहुत अच्छा है, उनका अपना आइन बहुत अच्छा है, मगर स्टूडेंट को बार बार नहीं रोकेंगे। और उनके माइंड में ये होता है कि नहीं, बच्चा है ये नहीं सीख सकता, नहीं चाहे वो बच्चा है और चाहे वो बूढ़ा है, और वो सीख सकता है या वो सीख नहीं सकता, आपका काम है कि आप उसको हर लेटर के ऊपर रोकें और आप उसको उसी पेशेंस के साथ, यानी आपका लेवल ऑफ पेशेंस भी नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए, आप उसको बार बार रोकें और आप उसको उसकी तसहीह करने की कोशिश करें। ठीक है, आपके हाथ में ये है, और स्टूडेंट का काम क्या है, वो बार बार रुके और उसको पलटाए और कोशिश करे। ठीक है, तो इसमें ये है कि वो लोग जो कि इस माइंडसेट के साथ हैं कि हम तजवीद नहीं सीख सकते इसलिए वो एफर्ट ही नहीं करते। ठीक है, या वो इसको अहम नहीं समझते, यानी उनके जहन में ये है कि तजवीद सीखना जरूरी नहीं है, यानी आप कुरान पाक को इस तरह से सही पढ़ना बहुत जरूरी नहीं है, तो वो उसको सीखने की एफर्ट नहीं करते। उनके पास अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं मगर वो उसको वेल नहीं करते। तो ये लोग जो हैं ये अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स ये उन लोगों में आते हैं जो कि इस्म का बोझ उठाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये है कि हमारी अपनी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, हमारी एक एफर्ट होनी चाहिए। दूसरा ये कि आप लोग माशाल्लाह बहुत सारे लोग तजवीद के इल्म से पहले से ही वाकिफ होंगे, बहुत सारा कुछ पढ़ चुके होंगे, हो सकता है बहुत सारे लोग डिफरेंट एरियाज में लोगों की मदद भी कर रहे हो। तो बीइंग अ टीचर सबसे अहम चीज जो है ना वो है आपका सब्र, यानी आपका पेशेंस। कभी भी जैसे मैंने अभी पहले भी थोड़ा सा जिक्र किया, कभी भी स्टूडेंट को पढ़ाते हुए आपके जो आपकी टोन है वो चेंज होना तो बहुत दूर की बात, आपके दिल में भी ये ख्याल नहीं गुजरना चाहिए कि उफ क्या है नहीं सीख रहा। ये चीज नहीं आनी चाहिए, चाहे आप किसी छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं और चाहे आप किसी बड़े को पढ़ा रहे हैं। क्यों ऐसा है और ऐसा आप कैसे अचीव कर सकते हैं? ठीक है, यानी आप ये जो सबर का लेवल है बहुत मुश्किल हो जाता है बाज औकात, बहुत बाज टीचर्स होते हैं जो थोड़ा हार्श होके पढ़ाते हैं, तो आप ये सबर का लेवल कैसे लेकर आते हैं? ये जो पेशेंस लेवल है ये आपकी इस सोच के साथ आता है कि आप किसी को सिखा नहीं सकते। ठीक है, आपका काम क्या है, एफर्ट, और आप अपने काम पर तवज्जो दें, और सिखाना किसका काम है, अल्लाह ताला का, वो आप अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें। ठीक है, बाज लोगों को स्ट्रगल से आता है, बाज लोगों को आसानी से आ जाता है, वो अल्लाह का काम है और वो अपनी हिकमत जानता है कि उसने किसको किस तरह से सिखाना है। ठीक है, तो आपका लेवल ऑफ पेशेंस बढ़ जाता है जब आप इस माइंडसेट के साथ स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, ठीक है। फिर दूसरी अहम चीज ये कि कुरान पाक के जो आदाब हैं आप सब उनसे वाकिफ होंगे। एक ऐसा अदब जो कि मेरी नजर में सबसे ज्यादा जरूरी है और जिसको मैंने देखा कि सबसे ज्यादा निग्लेक्ट किया जाता है, कि ये वो अदब है जो कुरान पाक का सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि कुरान पाक का कोई भी और अदब कुरान पाक के अंदर शामिल नहीं हुआ, मगर कुरान पाक का ये अदब जो है ये कुरान के अंदर है। यानी अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं सूरतुल आराफ आय नंबर 204 में, वइदा कुरी अल कुरआन फस्तमीउ लहू व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून। और आप देखें कि इसमें जो आखिर वाली बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम पर रहम किया जाए। वह इदा कुरी अल कुरान, जब भी कुरान पढ़ा जाए, फस्तमीउ लहू व अनसितू, तो बिल्कुल खामोश हो जाओ और गौर से सुनो। फस्तमीउ लहू, गौर से सुनो उसको, व अनसितू, और पूरी खामोशी इख्तियार करो। तो ये जो दो अदब हैं, एक तो ध्यान से सुनना, दूसरा ध्यान से सुनना का क्या मतलब है? सिर्फ लिसनिंग, एक साउंड है जो कानों से टकरा रही है? नहीं, आप खुद पढ़ें या आप लिसनिंग कर रहे हैं, आपका जो दिल है वो हाजिर होना चाहिए। ये बहुत अहम है। यानी आप कोशिश करें कि जो आपका दिल है वो हाजिर हो, आप उस चीज को अंडरस्टैंड करें, वो आपके अंदर उतरे। तो ये जो अदब है ये बहुत जरूरी है, और यही अदब है लअल्लकुम तुरहमून। अब ये जो लअल्लकुम तुरहमून है, इसके दो तर्जुमे किए जाते हैं, ताकि तुम पर रहम किया जाए, और बाज़ोकात ये भी तर्जुमा किया जाता है शायद कि तुम पर रहम किया जाए, ठीक है। तो आप देखें कि इस पार्ट के अंदर, यानी इन दो आदाब को पूरा करने से आपके ऊपर रहम होता है। तो आप और रहम क्या है, आप देखिए अल्लाह ताला का जो हाईएस्ट लेवल है रहम का, वो तो जन्नत है। मगर जन्नत का रास्ता आसान कैसे होगा? इल्म के रास्ते से। जितना इंसान इल्म हासिल करता है उतना वो हम्बल होता है, उतना वो चीजों को ग्रास्प करता है। और ये कैसे आएगा? ये आपकी बेटर लिसनिंग से आएगा, ये आपकी खामोशी से आएगा। तो कहीं पर भी कुरान पाक की तिलावत लगी हुई हो तो आप उसे खामोशी से सुने और आप उसे गौर से सुने, आपका ध्यान उस तरफ होना चाहिए। और कभी अगर ऐसा हो कि आप उसको पूरी तवज्जो नहीं दे पा रहे, या आप बातें हैं, या कोई आपसे सवाल कर बैठता है, या कुछ ऐसी बात है कि आपको दो लोगों में आपस में कोई कन्वर्जेशन करनी पड़ जाती है, तो आप अपनी रीडिंग को पहले रोकें, उसको बंद करके अपनी जरूरत पूरी करें और दोबारा से खोल कर तो उसको आपने इस्तादा से शुरू करना है। जी, आप सवाल कर सकते हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है, ये उन आदाब में से है जो कि कुरान पाक के अंदर ही मेंशन हुआ, और इसको इसका लिहाज रखना और इसका ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ये तजवीद के अंदर आपने भी इन सब का ख्याल रखना है, और इंशाल्लाह मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि इन सब चीजों को अपने जहन में भी रखा जाए और इनका ख्याल भी रखा जाए। अल्लाह ताला आप सबके लिए भी तजवीद के सफर को आसान करें, और हम सबके लिए भी, मेरे लिए भी इस सफर को बहुत सारी आसानियों से भर दें। अच्छा, अगर हम ध्यान से पढ़ें और अगर हम तजवीद के ऊपर फोकस करें तो हमारा मीनिंग के ऊपर ध्यान नहीं रहता। शायद ऐसा इसलिए है कि आप अभी तजवीद के बहुत अर्ली स्टेजेस पर हैं, तो आपको तजवीद पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। ऐसा हो सकता है, इसको कहा जा सकता है, लेकिन इंशाल्लाह आप आगे आगे देखेंगे तो तजवीद में ये होगा कि आप इसके लिए अलग से टाइम रख लें और आप अपनी रीडिंग का अलग से टाइम रख लें। यानी आप ऐसा नहीं कि तजवीद जब आप कुरान पाक रीड कर रहे हैं, जो आपका नॉर्मल रूटीन का है, उसमें फिर आपका ये है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जो तजवीद की प्रैक्टिस है ना, आप उसके लिए अलग टाइम रखें और उसमें आपका फोकस ज्यादा तजवीद के ऊपर हो, ज्यादा तजवीद के ऊपर हो। मानी को थोड़ा माइंड में रखने की कोशिश करें, कॉन्सेंट्रेट करें हर लेटर के ऊपर, उसकी अदायगी के ऊपर। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि जब आपकी तजवीद इंप्रूव होना शुरू होगी ना, तो वह आपकी रीडिंग में ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगी। फिर आप मीनिंग के ऊपर भी ध्यान रख सकेंगे और तजवीद के ऊपर, दोनों के ऊपर इकट्ठा। मुझे इसकी एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे ड्राइविंग। आप देखें कि जब हम ड्राइव करते हैं ना, तो जो लोग शुरू में ड्राइविंग सीखते हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं कि कहाँ से क्या करना है क्या करना है। और अगर आप उनसे बात करने की कोशिश करें तो वो ड्राइविंग के दौरान बिल्कुल नहीं बोलते ना, यानी वो एक वक्त में एक काम करते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो उनका एक जो है वो एक कोऑर्डिनेशन हो जाती है ब्रेन में और उनकी मोटर स्किल्स के अंदर। और फिर उसके बाद वो बातें भी करते हैं, वो इधर उधर भी देखते हैं, मगर उनका जो पांव है वो सही जगह पर होता है और उनको जरूरत नहीं होती कि वो सोचें कि अब उन्हें क्या करना है। तो बिल्कुल तजवीज़ पे भी ऐसा ही होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो आपका ब्रेन है वो कोऑर्डिनेट करने लग जाता है लेटर्स के साथ। लेकिन ऑफ कोर्स इसमें शुरू में आपको फोकस करना पड़ता है, यानी एक कॉन्शियस एफर्ट की जरूरत है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आप दोनों चीजों के ऊपर एट अ टाइम फोकस करे होंगे और आपको मुश्किल नहीं होगा। एक और चीज कि आप में से जितने लोग हैं, माशाल्लाह आप लोग सब तर्जुमा को करके आए हैं, तो हमेशा एक माइंड में चीज रखें कि जब कुरान पाक की रीडिंग करें तो आप ना अपने माइंड में तर्जुमा रखने की कोशिश करें, क्योंकि हमने इन दो चीजों को अलग कर दिया बहुत ज्यादा कि तर्जुमा हम अलग माइंड में रखते हैं, उसको मेमोराइज करने का टाइम अलग हो गया और तजवीद को पढ़ने का अलग टाइम हो गया। इन दोनों चीजों को आप साथ मिलाएंगे तो ये इंशाल्लाह मिक्स होंगे, ठीक है। तो आपने जब रीडिंग करनी है कुरान की तो आपने अपने माइंड में तर्जुमा भी रखना है। जैसे अब अगर हम रमजान की एग्जाम्पल लें तो हम जब रीडिंग करते हैं तो बाज़ुकात ऐसा होता है कि हम सिर्फ रीडिंग करते हैं, हमें नहीं पता कि हम क्या रीड करें। तो उसमें फिर ये है कि आप ना कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता, शुरू में आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी, यानी बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी कि जब आप रीड कर रहे हैं तो आपके माइंड में ट्रांसलेशन रहे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि आप उसमें फास्ट होना शुरू हो जाएंगे, और यही चीज है जो कि आपकी असल तिलावत को तिलावत बनाती है। यानी ये दोनों चीजें, जब ये दोनों पार्ट्स मिक्स होंगे तो ही आपकी तिलावत असल मानी में तिलावत होगी। और अल्लाह ताला के मुताबिक उलाइका युमिनून बिह, तो आप देखें कि इस कैटेगरी में आने के लिए आपको एक कॉन्शियस प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। और फिर यही कुरान जो है वो आपकी जबान से हलक से गुजर के आपके दिलों के अंदर जाता है, ठीक है। हाँ, ऐसा है, शुरू में आपको बहुत मुश्किल होगी, आपको हो सकता है कि तर्जुमे वाला कुरान साथ में रखना पड़े, लेकिन आहिस्ता 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 आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। सही, तो ये सब चीजें आप अपने जहन में रखें इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास से फिर हम जो है वो अपने तजवीद के रूल्स का बकायदा से आगाज करेंगे और इंशाल्लाह रीडिंग प्रैक्टिस का भी इंशाल्लाह। कोई और किसी का सवाल है तो आप पूछिए। जी बिल्कुल, कुछ वर्ड जो हैं वो सिमिलर होते हैं तो ये आसान हो जाता है आपके लिए तर्जुमा याद करना। अगर आप लोग उस्तादा करीमा की बुक्स अवेलेबल हैं आसानी के साथ तो आप लोग उनको ले सकते हैं, नहीं तो आई थिंक फर्स्ट टू चैप्टर्स के तो नोट्स अवेलेबल होंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे ना फर्स्ट टू चैप्टर्स के, एडमिन के पास होंगे इंशाल्लाह। ये है अहकाम तजवीद बाय करीमा कारोल, आई गेस दारुसलाम पर मौजूद होगी, आप पता कर सकते हैं। नहीं एक्चुअली हम लोग रिवाइज करेंगे, सफात से नहीं शुरू करेंगे हम पहले, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स इस क्लास में नए हैं, उन्होंने पहले तजवीद नहीं की मुझसे, तो इंशाल्लाह हम पहले मखारिज से रिवीजन करेंगे और फिर इंशाल्लाह सफात तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। बारकुम अल्लाहु फीकुम, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.